स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो, वो भी तुम्ही तो हो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं, और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन श्रोता मित्रों का जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करके हम तक पत्र के माध्यम से, SMS के माध्यम से और फोन के माध्यम से बातचीत किया है। हम धन्यवाद देते हैं उन श्रोता मित्रों को और आशा करते हैं कि आप भी जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के पश्चात उन आशीषों को पाकर हमें पत्र के द्वारा या फोन के द्वारा या हमारे वेबसाइट के द्वारा हमसे संपर्क करेंगे और अपनी आशीषों को हमारे साथ बांटेंगे। और यदि किसी प्रकार के प्रार्थना के विषय हैं आप उसे भी दें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके सामर्थ्य वचन का अध्ययन एक साथ बैठकर रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम जकरयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने पाए, बातचीत करने पाए, उनके हृदय को छूने पाए, उनके कठोर मनों को आपका वचन तोड़ने पाए, ताकि प्रभु वे आपकी ओर फिरें, नम्रता का जीवन जिए, दीनता का जीवन जिए, एक दूसरे से प्रेम करने वाला जीवन जिए, हर एक प्रकार की बुरी ताकतें, बुरी बातें, अड़चने, रुकावटें, कठोरतापन यीशु आपके नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए, आपका वचन सामर्थ्य रीति से कार्य करने पाए। आज के दिन हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, पिताजी आप उन्हें स्पर्श करें, उनके जीवन से बातचीत करें, ताकि वे इस सत्यता को समझ सकें कि आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु उनके हर एक प्रकार की कठिन बीमारियों से आप ही अभी इसी वक्त उन्हें छुटकारा दें यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, आप उन्हें आजादी दें। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आप आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब जकरयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब जकरयाह के दर्शन के द्वारा से सीख रहे हैं कि परमेश्वर किस तरीके से अपनी बातों को अपने लोगों तक वह पहुंचाता है। जकरयाह ने अनेक दर्शन देखे थे। उसने घुड़सवार देखे, सिंह देखे, लोहार देखे और नापने की डोरी भी देखी। उसने देखा कि शैतान महायाजक पर अशुद्धता का दोष लगा रहा है, तो परमेश्वर उसे शुद्ध वस्त्र अर्थात स्वच्छ वस्त्र पहनाता है। उसने दर्शन में यह भी देखा कि 7 भुजाओं वाला दीपदान, 7 नालियों वाला दीपदान रखा है और 2 जैतून के वृक्ष उसके दीपकों के लिए तेल उपलब्ध करवा रहे हैं। फिर उसने 2 अति असामान्य दर्शन देखे। एक में खुला हुआ बहुत बड़ा कुंडली ग्रंथ उड़ रहा था, एक पत्र उड़ रहा था जो परमेश्वर की 10 आज्ञाएं लिए हुए है। इसके बाद उसने एक स्त्री को भी देखा जो एपा में बैठकर उड़ रही है। और इस प्रकार से हम जकरयाह के दर्शन को देख रहे हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि परमेश्वर हमें आगे क्या कहता है। जकरयाह की पुस्तक 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठे शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। वह कहता है वह चोर के घर में घुसकर ठहरेगा। यह मनुष्य के पारस्परिक संबंध की आज्ञा है। तब वह कहता है और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में। यह भी 10 आज्ञाओं में है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लिया जाए। मेरे प्रियो, हम विश्वासियों का जीवन 10 आज्ञाओं से ऊंचा है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें अनुग्रह की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था तो दी थी, परंतु उसे पूरा करने के लिए सहायता का प्रबंध नहीं किया था। इसका अर्थ है कि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। पुराने नियम के भक्तों में पवित्र आत्मा का वास नहीं था, अतः मनुष्य अपने क्षमता में 10 आज्ञाओं को मानने के योग्य नहीं था। वह उसका पूरा पालन नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम अपने जीवन में आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज आदि उत्पन्न करें। ये सब तो मूसा की व्यवस्था में नहीं थे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं एपा में बैठे स्त्री का दर्शन। मुझे एक बार किसी ने आमंत्रित किया कि मैं एक ऐसे स्थान पर जाऊं जहां उड़ंत स्त्रियां उतरती हैं, परंतु मैं वहां दो कारणों से नहीं गया। एक कारण तो यह था कि मुझे उड़ंत स्त्रियों में विश्वास नहीं था, और दूसरा कारण था कि मुझे डर था कि यदि वे मुझे उड़ाकर ले गए और नहीं लौटाया तो क्या होगा। परंतु लोगों को विश्वास था कि वहां उड़ंत स्त्रियां उतरती हैं। मेरे प्रियो, जकर्या भी उड़ंत स्त्रियों में विश्वास नहीं करता था, परंतु उसने दर्शनों में दो उड़ने वाली वस्तुएं देखी। उसने अंतरिक्ष में उड़ने वाली दो वस्तुएं देखी थीं। जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि जकर्या की पुस्तक रहस्यमय है। जी हां, इसमें प्रतीकों का उपयोग किया गया है। दूसरे शब्दों में जो वह लिखता है वह इस संसार से परे है। हमें इस अध्ययन में अंधविश्वास और भौतिकवाद दोनों से बचना है। जी हां, अब हम एक और दर्शन को देखने जा रहे हैं। यहां अंतरिक्ष यात्री एक स्त्री है। वह एक एपा में सवार उड़ रही है। तो आइए आप मेरे साथ पढ़िए जकर्या की पुस्तक 5 अध्याय उसके 5 पद को। लिखा हुआ है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। यहां भी वह जगा हुआ है, उसकी आंखें खुली हैं। यह उसका स्वप्न नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत उससे कहता है कि ऊपर देख। जकर्या 5 उसके 6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, मैंने पूछा वह क्या है। उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, एक स्त्री हवा में उड़ रही है। जकर्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अतः उसने स्वर्गदूत से पूछा कि यह सब क्या है। उसने कहा, वह एपा था। एपा एक नाप था जिसके द्वारा आटा, गेहूं आदि को नापा जाता था। एपा व्यापार का प्रतीक है। और तब जकर्या 5 के 7 पद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। इस दर्शन में हम इसराइल के पाप और अधर्म का दंड देखते हैं। यह दर्शन प्रभु राज के 1000 वर्षों से संबंधित है। जी हां, जब इसराइल देश में पाप और अपराध नहीं रहेगा, यह प्रभु राज से पूर्व बेबीलोन के दंड से भी संबंधित है। इसकी तुलना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 18 से करके देखें, जहां पर व्यापारिक बेबीलोन के दंड का वर्णन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय में धार्मिक बेबीलोन के दंड की चर्चा की गई है। परमेश्वर लालच का दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है तू लालच ना करना, अर्थात तू लालच मत कर। परमेश्वर पैसे के लोभ और व्यापार से संबंधित लालच का दंड भी अवश्य देगा। तोड़ा वजन नापने का सबसे बड़ा नाप था, वह जस्ते का बना होता था। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने वाले इसराइलियों में पैसे का लोभ और सांसारिक वस्तुओं की लालसा थी। नहमिया को उनका यह व्यवहार सुधारना पड़ा, क्योंकि वे अपने ही भाइयों को ब्याज पर पैसा देते थे, जैसा कि आज भी बहुत से मसीही भाई बहन अपने ही लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं। मूसा की व्यवस्था में ब्याज पर पैसा चलाना मना था, देना मना था। जब उन्होंने मंदिर का पुनः निर्माण कर लिया, तब मलाकी ने उनसे पूछा, मलाकी नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 पद में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्होंने उसे लूटा है। वे लालच के दोषी थे और धनोपार्जन के लिए वे परमेश्वर को धोखा दे रहे थे तथा अपने भाइयों को हानि पहुंचा रहे थे। परमेश्वर कहता है कि वह देश से लालच की आत्मा को समाप्त कर देगा। जी हां, आज भी हम में से कई इसी प्रकार के लालच में फंसे हुए हैं। परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हुए संसार की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि लालच की आत्मा को वह समाप्त कर देगा। आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। गलत स्थान में बैठी हुई स्त्री बुराई का प्रतीक है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 33 पद में, एक स्त्री आटे में खमीर मिलाती है। खमीर बुराई को प्रकट करता है, और धर्म के संबंध में स्त्री जैसे युवातीरा की कलिसिया में, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 20 पद में, लिखा है, तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है। और तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय की बड़ी वेश्या आदि बुराइयों का प्रतीक ही है। जी हां, जकरिया के दर्शन में स्त्री इसराइल का प्रतीक है। इसराइल व्यापार में लीन था। परमेश्वर उन्हें आशीष देना तो चाहता था, परंतु उनके लालच का भयानक पाप धोया जाना बाकी था। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक जीवन बचाए जाए, परंतु हम अपने ही पापों के कारण परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन आशीषों को प्राप्त करें जिसे उसने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए रखा है, परंतु हम उसे लेना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि वह कहता है कि उनके लालच का भयानक पाप का धोया जाना बाकी है। जकरिया 5 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। मैं इस पद के संबंध में मेरिल अंगर का अनुवाद देता हूं, जो इस प्रकार से है, स्त्री जो दुष्टता है उसके विषय में घोषणा करने के बाद उस स्वर्गदूत ने उस स्त्री को एपा में डालकर उस एपा के मुंह पर ढक्कन लगा दिया। अब तक वह एपा में संतुष्ट बैठी थी, परंतु अब क्योंकि व्यापारिक बेबीलोन के विनाश का समय आ गया है, वह स्त्री वहां से बचकर निकल जाना चाहती है। क्योंकि वह उसकी किस्मत का भाग बनना नहीं चाहती है, अतः वह बचकर निकल जाना चाहती है। मेरे प्रियो, यह अनुवाद बहुत अच्छा है। आगे हम देखते हैं जकरिया 5:9 में लिखा हुआ है, तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली जाती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगलग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। ध्यान दीजिए, स्वर्गदूत ने जकरिया को बताया कि उस स्त्री का अर्थ है दुष्टता, और तब वह कहता है उनके पंख लगलग के से हैं। उनके पंख बहुत शक्तिशाली थे। धर्मशास्त्र में लगलग स्वर्गदूत के जैसा नहीं है, यह एक अशुद्ध पक्षी है। जकरिया 5:10-11 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहां लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश के लिए, कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पलिस्तीन से अभक्त और निर्दयी व्यापार तंत्र को समाप्त कर देना चाहता था। मैं यहां एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इसराइली मुख्य रूप से चरवाहे और कृषक थे, और मूसा की व्यवस्था अधिकतर इसी जीवन शैली से संबंधित थी। उसमें भूमि, दाख की बारियां, गेहूं, मवेशी आदि के संबंध में निर्देश दिए गए थे, परंतु वहां से बाहर वे व्यापार करने लगे थे। क्या आपने कभी अमेरिका में किसी यहूदी को खेती करते हुए सुना है या देखा है? बेबीलोन में उन्होंने व्यापार करना सीख लिया था। उन्होंने अन्य जातियों से पैसों का लोभ भी सीखा था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 में हम देखते हैं कि परमेश्वर व्यापारिक बेबीलोन को दंड देगा, उसका नाम मिटा देगा। यह प्रभु राज के समय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18:2 में लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि बेबीलोन, जो एक सामर्थी देश है और व्यापार का केंद्र है, वह भी गिराया गया, क्योंकि परमेश्वर उसे दंड देगा, उसके नाम को मिटा देगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर भी हमारे जीवन को देखता है और चाहता है कि हम दुष्टता से अपने मनों को फिराकर उस परमेश्वर की ओर लौट आएं और सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम नाश किए जाएं। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, इस बात को जानें कि परमेश्वर की निगाहें आप पर हैं और वह चाहता है कि आप अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं। यदि आप अपने जीवन में घमंड को लेकर के बैठे हैं, पैसों की आप घमंड कर रहे हैं, या आप घूस दे रहे हैं, या किसी प्रकार की बुराइयों में आप उलझे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध किए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मनों को फिराएं। और यही कारण था कि परमेश्वर इसराइलियों से भी कहता है कि उनके पापों के लिए वह उन्हें दंड देगा, वह बेबीलोन को भी दंड देगा। जो काम उनको दिया गया था, उस काम को छोड़कर वे दूसरे कार्यों को कर रहे थे, जिस कारण परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता है और कहता है कि उन्हें दंड मिलेगा। क्या आज आप परमेश्वर की निकटता का जीवन जी रहे हैं? मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, परंतु मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है, हमें चेतावनी देता है कि हम बुराइयों से अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसी के साथ यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम